अमरजीत जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सृष्टि बेचैन सी अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि कमरे से डॉक्टर के साथ अर्जुन बाहर निकला। अर्जुन पर नज़र पड़ते ही सृष्टि के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और उस दिन की सारी बातें उसको याद आ गईं। अर्जुन जो डॉक्टर से कुछ बात करते ही बाहर आ रहा था, उसकी नज़र जब सामने खड़ी सृष्टि पर पड़ी तो वो बोलते बोलते रुक गया और अचंभित सा उसको देखने लगा। उसकी हालत देखकर वो खुद स्तब्ध रह गया था। उस दिन की बातें याद आते ही सृष्टि ने अपने आगे बढ़ते कदमों को पीछे हटा लिया। ये देखकर पीछे खड़े अमरजीत जी ने कहा, सृष्टि, आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा घर है और हमने आपको बुलाया है क्योंकि हमारे पोते को आपकी ज़रूरत है। आप बेखौफ होकर उनके पास जाइए, कोई नहीं रोकेगा आज आपको। उनकी बात सुनकर सृष्टि ने पलटकर बेचारकी से उन्हें देखा तो उन्होंने उसको जाने का इशारा कर दिया। सृष्टि ने मुड़कर एक नज़र अर्जुन को देखा और भारी कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई। अर्जुन ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बस खामोश खड़ा उसको देखता रहा। अर्जुन, अब मैं चलता हूँ, कुछ देर में अंश को होश आ जाएगा, उसको कुछ खिलाकर दवाई दे देना और अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। डॉक्टर की आवाज़ कानों में पड़ी, तब जाकर अर्जुन की नज़रें सृष्टि पर से हटी और उसने सर हिला दिया। सृष्टि बेड पर लेटे अंश के पास चली आई। उसका गोल मटोल अंश कुछ ही दिनों में कितना कमज़ोर हो गया था। हमेशा फूल सा खिला रहने वाला चेहरा एकदम मुरझा गया था। चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे, शायद रोया था वो। उसका गोरा रंग पीला पड़ गया था, हमेशा सितारों से चमकने वाली आंखें बंद थीं। सृष्टि को खुद पर दया नहीं आई, पर जब उसने अंश की हालत देखी तो खुद को संभाल नहीं पाई और मुंह को अपनी हथेली से कस के बंद करके फफक कर रो पड़ी। गेट पर खड़ा अर्जुन खामोश खड़ा उसे देख रहा था, तभी अमरजीत जी के शब्द उसके कानों में पड़े। देख लीजिए अर्जुन, आपके एक गलत फैसले ने उन दोनों का क्या हाल किया है। अब भी आपको लगता है कि आपका फैसला सही था और सृष्टि और अंश को एक दूसरे से दूर रखा जाना चाहिए? हमें तो नहीं लगता, जो हम देख रहे हैं उसके अनुसार हमें तो लगता है कि इन दोनों को कभी एक दूसरे से दूर नहीं किया जाना चाहिए, वरना दोनों ही नहीं सह सकेंगे। अर्जुन ने ना तो पलटकर उन्हें देखा और ना ही कुछ बोला, बस अंदर रोती बिवस्ती सृष्टि को देखता रहा। कुछ पल सृष्टि यूं ही रोती रही, फिर उसने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछने के बाद अंश के सरिहाने के पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ पल बाद अंश की पलकें हल्की सी हिली और उसने अपनी आंखें खोली, शायद वो इस स्पर्श को पहचान गया था। जब सृष्टि ने उसको होश में आते देखा तो उसको अपनी बाहों में उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बेतहाशा उसके चेहरे को चूमने लगी। नन्हा अंश भी उससे लिपट गया और उसके टॉप को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में भींच लिया, शायद उसको खुद से दूर जाने से रोक रहा था। अर्जुन कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर बाहर चला आया और माला को देखकर बोला, अंश के लिए दलिया बना दो, खाएगा तभी दवाई दी जाएगी और तब तक दूध दे आओ अंदर, सृष्टि पिला देगी उसे। माला तुरंत सर हिलाकर वहां से चली गई। अर्जुन बाहर जाने को मुड़ा ही था कि रश्मि के साथ बाकी सबने वहां कदम रखा, जिन्हें देखकर अर्जुन के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। कुछ देर बाद अर्जुन के रूम में उसके बेड पर बैठी सृष्टि अंश को खिचड़ी खिला रही थी। इतने दिनों में जिस बच्चे ने जागते में दूध की बोतल तक मुंह में नहीं ली थी, वो उसकी गोद में बैठा शांति से खिचड़ी खा रहा था। अब भी उसकी मुट्ठी सृष्टि के टॉप पर कसी हुई थी। सृष्टि के लबों पर इतने दिन बाद आज मुस्कान थी और इतने दिनों से जो लब खामोश थे, आज वो अंश से बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसने अंश को खाना खिलाया, फिर अमरजीत जी की दी दवाई उसको पिलाई और जैसे ही उसको बेड पर बिठाकर उठने लगी, अंश जो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था, वो मुंह बिचकाकर रो पड़ा। सृष्टि ने तुरंत उसको अपनी बाहों में उठा लिया और दुलाराते हुए बोली, रोते नहीं बेटा, आंटी आपको छोड़कर नहीं जा रही, आंटी तो पानी लाने जा रही है ताकि आपका मुंह साफ कर सके। अंश उसकी गोद में आने पर चुप तो हो गया, पर मुंह बिचकाए उसको नम आंखों से देखने लगा और दोनों मुट्ठी में उसके टॉप को भींचे उसके सीने में अपना सर छुपाकर अपना मुंह रगड़ दिया। ये उसकी आदत थी, हमेशा ऐसे ही करता था वो। सृष्टि उसकी हरकत पर हंस पड़ी। सब समझ गई मैं, इतना नाटक इसलिए किया जा रहा था। अब आंटी के कपड़े गंदे कर लिए, अब सुकून मिल गया होगा आपको। सृष्टि ने छोटी नाराजगी दिखाई तो अंश ने उसके सीने से सर बाहर निकालकर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसको देखा और मुस्कुरा दिया, जिससे उसके मसूड़े नजर आने लगे। अंश की शैतानी देखकर सृष्टि ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वहां खड़े लोगों को देखकर उसकी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। सामने उसकी मम्मी पापा शान आरवी, रश्मि रेहान, आलोक जी, रजनी जी के साथ अर्जुन और अमरजीत जी भी खड़े थे। सृष्टि को एक नज़र देखकर सब धीरे धीरे वहां से चले गए। सृष्टि अंश को लेकर बाथरूम में चली गई। इस वक्त सृष्टि लिविंग रूम में अंश को गोद में लिए एक तरफ खड़ी थी और उसके सामने वृंदा जी और अभिजीत जी खड़े थे। बाकी सब भी वहीं थे और कुछ परेशान नजर आ रहे थे। अभिजीत जी कुछ पल सृष्टि को देखते रहे, फिर बड़े ही प्यार से बोले, सृष्टि बेटा, ये सब क्या है? अभिजीत जी के चुप होते ही वृंदा जी ने हाथ बांधे उसको घूरते हुए उससे सवाल किया, कब से चल रहा है ये सब? आप यहाँ क्या कर रही? क्या रिश्ता है आपका इस बच्चे से? उनका गुस्सा देखकर रंज सृष्टि के सीने से चिपक गया। सृष्टि ने लाचारगी से रश्मि को देखा तो उसने तुरंत ही वृंदा का रुख करते हुए बोली, मॉम मैं? उसने अभी इतना कहा ही था कि वृंदा जी की खूरती निगाहें उस पर पड़ी और साथ ही उन्होंने अपना हाथ करते हुए सख्त लहजे में कहा, आप बीच में कुछ नहीं कहेंगी, हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। रश्मि अब बेबसी से सृष्टि को देखने लगी क्योंकि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वृंदा जी ने वापस सृष्टि की तरफ घूमते हुए एक बार फिर सख्त लहजे में सवाल किया, कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे सृष्टि, क्या चल रहा है ये सब और कितनी बातें छुपाई हैं आपने हमसे? कब से यहाँ आना जाना है आपका और क्या रिश्ता है आपका इस बच्चे से जिसे आप अपने सीने से लगाए खड़ी हैं? उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर सृष्टि के साथ साथ अंश भी डर गया और उसकी करुण रुदन की आवाज वहां गूंज उठी। ये देखकर सृष्टि और ज्यादा घबरा गई और अंश को बहलाकर चुप करवाने लगी। कुछ देर में अंश चुप हुआ तो सृष्टि माला को देखकर बोली, अंश को कुछ देर के लिए ले जाएं बाहर। माला हालात समझ रही थी, उसने सर हिला दिया और अंश को उसकी गोद से लेने लगी, पर अंश जिसको इतने दिनों बाद सृष्टि मिली थी वो उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। सृष्टि की टॉप को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में भींचे वो उसके सीने से लिपट गया। सृष्टि ने उसको समझाने की कोशिश की पर अंश गया ही नहीं और जबरदस्ती लेने की कोशिश की तो वो फिर रोने लगा। ये देखकर सृष्टि ने माला को रोक दिया और वृंदा जी को देखकर बेबसी से बोली, मॉम आप सब जाइए, मैं कुछ देर में घर आकर आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगी। नहीं, हमें हमारे सवालों के जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए, वो जिद पर अड़ी थी। सृष्टि ने कोई और रास्ता नहीं देखते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, अंश के जन्म से ही मेरा यहाँ आना जाना है, किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि बताती तो शायद आप लोग आने नहीं देते और अंश से मिले बिना मैं रह नहीं सकती थी। क्या रिश्ता है उससे ये मैं भी नहीं जानती, पर उसके जन्म के बाद जब पहली बार उसको अपनी बाहों में थामा था तभी से मन में उसके लिए प्यार और ममता का जन्म हो गया था। वक्त के साथ जुड़ाव और गहरा होता चला गया।
मैंने जन्म नहीं दिया अंश को, देखा जाए तो कोई रिश्ता नहीं हमारा, फिर भी मेरे दिल के बहुत करीब है अंश और बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया है मेरा उससे। उसके साथ बहुत सुकून मिलता है मुझे, खुश रहती हूँ, अच्छा लगता है उसका ख्याल रखना मुझे। पता नहीं ये कैसा रिश्ता है, पर मैं नहीं रह सकती अंश के बिना। सृष्टि की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उसकी बात सुनकर वृंदा जी के आंखें तरेर कर उसको देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, आप जानती भी हैं क्या कह रही हैं आप? किसी दूसरे के बच्चे से इतना लगाव, इतना मोह कि उनके लिए आपने अपनी सेहत बिगाड़ ली? कब तक आप यूं इस बच्चे से आकर मिलती रहेंगी? आज आप हमारे पास हैं तो एक पल को आपकी खुशी के लिए आपको यहाँ आने की इजाज़त भी दे दें, पर हमेशा तो हम आपको अपने पास नहीं रखेंगे। शादी करेंगी आपकी और फिर आपको यहाँ से जाना होगा, तब क्या करेंगी आप, सोचा है आपने? सृष्टि पहले तो सर झुकाए खड़ी रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं कभी शादी नहीं करूँगी। जैसे ही उसने ये कहा वृंदा जी का दिमाग गुस्से से भन्ना उठा, वो गुस्से में उसके तरफ बढ़ने को हुई पर अभिजीत जी और रिहान ने उन्हें पकड़कर रोक लिया, मॉम प्लीज, उसके साथ अंश है। रिहान ने जैसे ही ये कहा वृंदा जी ने पलटकर गुस्से से धधकती आंखों से उसे देखा और जबड़े भींचते हुए बोली, अगर आप चाहते हैं कि आज ये हमारे हाथ से ना पिटे तो समझा दीजिए उन्हें कि अपनी बकवास बंद करें। क्या मतलब हुआ इस बात का कि कभी शादी नहीं करेंगी? अपनी लाडली को समझाकर घर लेकर चलिए, वरना फिर हम उन्हें अपने तरह से समझाएंगे। उनके गुस्से को देखकर रिहान ने शांत लहजे में कहा, मैं बात करता हूँ उससे, आप प्लीज शांत हो जाइए। वृंदा जी गुस्से के घूंट पीकर चुप हो गई। रिहान ने गहरी सांस छोड़ी और सृष्टि के पास चला आया जो अंश को अपने सीने से लगाए टरी सहमी सी सर झुकाई खड़ी थी। टू बी कंटिन्यूड।